جزاك الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. तो आजकल हमने अपने पीर और बुध की रात वाली क्लास यानी दीन एसेंशियल्स फॉर मेन की जो क्लास होती है उसके अंदर उलूम और कुरान का मौजू उठाया हुआ है, और इसके तहत हम मारिफुल कुरान के जिन नंबर एक से उसका मुकदमा पढ़ रहे हैं। तो और ये मुकदमा किसका लिखा हुआ है? ये हजरत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामद बरकातुहम का लिखा हुआ है, मद्दुहम का लिखा हुआ है। तो उसमें हमने मक्की और मदनी आयात का मौजू जो है वो पिछली क्लास के अंदर पढ़ लिया था। फिर उसके बाद मक्की और मदनी आयतों की कुछ खसूसियात पढ़नी है पेज नंबर 27 के ऊपर। तो वो हम आज शुरू करते हैं कि उसमें लिखते हैं कि उलमाए तफसीर ने मक्की और मदनी सूरतों का इस्तेकरा करके उनकी बाज ऐसी खसूसियात बयान फरमाई हैं जिनसे पहली नजर में ये मालूम हो जाता है कि ये सूरत मक्की है या मदनी है। ठीक है, तो जो सबसे बुनियादी बात पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी वो ये कि मक्की और मदनी सूरतों का मतलब ये नहीं कि सूरत कहाँ नाजिल हुई है, बल्कि सूरत कब नाजिल हुई है। ठीक है, हिजरत से पहले नाजिल हुई तो वो मक्की कहलाती है, हिजरत के बाद नाजिल हुई तो वो मदनी कहलाती है, चाहे नाजिल होने की जगह कोई भी हो। ठीक है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए फरमाते हैं कि ये कवायदे कुल्लिया ये हैं। इस्तिकरा का मतलब होता है करार पकड़ना। ठीक है, तो करार का मतलब होता है जगह यानी एस्टैब्लिशमेंट, यानी स्टेशन। ठीक है, तो नुमाए तफसीर ने मक्की और मदनी सूरतों का इस्तिकरा करके यानी इनका जो है ना वो एस्टैब्लिश करके इनको जो है कि इनको इनको जगह पे रख करके इनका मुकाम बना करके फिर उसके बाद ऐसी खसूसियात बयान फरमाई हैं। ठीक है, तो मुकर्रर करके भी हम आम जुबान में जिस तरह से कहते हैं किसी चीज को मुकर्रर कर लिया आपने। तो फिर कवायदे कुल्लिया ये हैं। नंबर वन, कि हर वो सूरत जिसमें लफ्ज कल्ला हरगिज नहीं जिसका मतलब बनता है। ठीक है, हर्फ रदा, रदा कहते हैं झड़कने का यानी डांटने का, झड़कने का नहीं बल्कि डांटने के लिए लफ्ज अरबी जुबान में इस्तेमाल होता है कल्ला, ऐसे बाकायदा इसकी इसका लहजा भी बनता है। तो जिन सूरतों में लफ्ज कल्ला आया है वो मक्की सूरत है। सुभान अल्लाह, क्या जबरदस्त, कल्ला के लफ्ज की बुनियाद पर जो है ना वो फैसला मक्की सूरत है। ये लफ्ज 15 सूरतों में 33 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, और ये सारी आयतें कुरान करीम के आखिरी निसफ हिस्से में हैं। ठीक है, इब्तिदा में मुशरिकीन जो मक्का के थे उनसे जो है वो कुरान मजीद मुखातब होता था, और उसमें जो है ना वो उनको जरा सख्ती के साथ भी जो है डांट डपट वगैरह भी हो रही होती थी कि देखो तुम तो मेरे खलील के औलाद में से हो, तुम तो मेरे घर के जो है ना वो मुतवल्ली हो, और तुम्हारे पास तो वो कुछ है जो कि किसी और के पास मैंने नहीं दिया है। ईलाफ कुरैश, ईलाफ रहलत शताई वस्वाइफ, है क्या क्या नेमतें मैंने तुम्हें दी हुई हैं, और तुम जो है वो शिरक करते हो मेरे साथ, तुम जो है वो अपनी मन मर्जी चलाते हो दीन के अंदर। ठीक है, तो कल्ला टांट डपट। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद दूसरी बात कि हर वो सूरत जिसमें हनफी मसलक के मुताबिक कोई सजदे की आयत आती है वो मक्की है। ठीक है, क्योंकि अहनाफ के और शवाफे और बाकी जो तीन मजाहिब हैं यूजली फिका में अक्सर ऐसा होता है कि अहनाफ एक तरफ होते हैं और बाकी जो तीन इमाम होते हैं ना उनका मौकिफ एक तरफ होता है। तो 14 गालबन बनती है ना जो जो हमारे यानी अहनाफ के नजदीक सजदे के आयात हैं वो 14, तो वो जहां पर है ना तो वो किस सूरत मक्की ही है। ठीक है, क्योंकि दूसरों के नज़दीक यानी दूसरे अहमा के नज़दीक थोड़ा सा आगे पीछे है, तो फिर वो स्टैंडर्ड पर पूरा नहीं उतरता कि यहाँ पे सिर्फ सजदे की आयत होगी तो वो मक्की होगी, क्योंकि मदनी सूरत के अंदर भी सजदे की आयत है। ठीक है, अच्छा, सूरह बकरा के सिवा हर वो सूरह जिसमें आदम अलैहिस्सलाम व इबलीस का वाकया मजकूर है वो मक्की है। ठीक है, सूरह बकरा के अंदर तो है ही, लेकिन वो मक्की सूरत नहीं कहलाती है, मदनी सूरत कहलाती है, बाकी जितनी भी है ना वो मक्की सूरत है। अच्छा, इसमें फिर नीचे मुफ्ती शफी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने एक और फुट नोट इसमें लिखा कि ये कायदा इतकान वगैरह से माखूज है, यानी उलूम कुरान की एक किताब, इसका अक्सर यहाँ पे हवाला है इतकान या मनाहिलुल इरफान। ठीक है, तो खैर इतकान से ये कायदा माखूज है, और जो इस कॉल के मुताबिक तो दुरुस्त है कि जिसकी रूह से सूरह हज मक्की है, यानी सूरह हज एक कॉल के मुताबिक उलमाए कराम के सूरह हज मक्की है, लेकिन अगर उस सूरत को सूरह हज को जो है वो मदनी करार दिया जाए जैसे कि बाज़ सहाबा व ताबईन से मरवी है, तो फिर सूरह हज मुस्तस्ना होगी इस कायदे से, वो एक फिर एक्सेप्शन कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि सूरह हज के अंदर भी आदम और इबलीस का तस्करा है, तो फिर वो मक्की है इस कायदे के मुताबिक, और अगर उसको मदनी कहा जाएगा तो फिर उसके अंदर आदम और इब्लीस का जिक्र है, तो फिर वो एक एक्सेप्शन कहलाएगी। लिल अक्सर हुक्मुल कुल, अक्सर के ऊपर कुल का हुक्म लगा दिया जाता है, और एक्सेप्शन जो है वो फिर काउंट नहीं की जाती उसूल कवायद के अंदर। पॉइंट नंबर 4 या कायदे कुल्लिया नंबर 4। कुल्लिया का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल जो कि कुल पर अप्लाई होता हो, अक्सर और बेशतर के ऊपर अप्लाई होता हो, उस कायदे को कायदे कुल्लिया कहते हैं। अच्छा, चौथा कायदे कुल्लिया कि हर वो सूरत जिसमें जिहाद की इजाजत या उसके अहकाम मजकूर हैं मदन। ठीक है ना, ये बात तो इंशाल्लाह हम सबको पता ही होगी कि मक्का मुकरमा की जिंदगी के अंदर तो जिहाद था ही नहीं, उसका तो नौबत ही नहीं आई थी, उस वक्त तो रिटेलिएशन की इजाजत ही नहीं, वो सारा सिलसिला तो फिर मदीना तैयबा में शुरू हुआ है, तो आसान सी बात समझ में आने वाली है। पांचवा कि हर वो आए जिसमें मुनाफिकों का जिक्र आया है वो मदनी सूरत है। ठीक है, क्योंकि मुनाफिकीन का जो कॉन्सेप्ट था ये तो रियासत मदीना के बनने के बाद शुरू हुआ ना, उससे पहले तो मुनाफिकीन की जरूरत ही कोई नहीं थी, वो तो खुल करके सारे मुखालफत करते थे, क्योंकि उस वक्त तक कोई सिस्टम नहीं बना था, मुसलमानों का अपर हैंड हुआ ही नहीं था। ठीक है, जब अपर हैंड हो गया था तब जो है वो कुफार के एक तबके को गुरेला वॉरफेयर की जरूरत पेश आई, यानी छुप के हमला करने की जरूरत पेश आई, और मुनाफिक कौन होता है जो छुप के हमला करता है। ठीक है, तो मक्का मुकरमा में इसकी रेलिवेंसी नहीं थी, मदीना तैयबा में इसकी रेलिवेंस बनी जब स्टैब्लिश हो गई रियासत। तो ये पांच कायदे को लिया लिखे हैं, फरमाते हैं कि और मंदरजा जेल खसूसियात उमूमी और अक्सरी हैं, यानी कभी कभी इनके खिलाफ भी हो जाता है, लेकिन अक्सर व बेशतर ऐसा ही होता है। ठीक है, तो वही लिल अक्सर हुक्म कुल वाली बात। अच्छा, फिर फरमाते हैं कि मक्की सूरतों में अमूमन या अय्युहन्नास ए लोगों के अल्फाज से खिताब किया गया है, और मदनी सूरतों में या अय्युहल्लज़ीना आमनू ईमान वालों के अल्फाज से खिताब किया गया है। ठीक है, सुभान अल्लाह, क्या बात है, उलमाए कराम की हमारे हैं, यानी कुरान मजीद के ऊपर कैसे कैसे जो है ना वो डेरे डाले हैं कि बस उसकी यानी कुछ नहीं छोड़ा है, सुभान अल्लाह, उलमाए कराम, यानी अल्लाह ताला ने दिल में ये शौक और ये मोहब्बत और ये जौक पैदा किया इस उम्मत के कि मेरे कलाम को जो है ना तुम जिसको कहते हैं ना घोल के पी जाओ, अब कोई ये ना समझे, पहले भी एक हो चुके हैं ना घोल के पी जाओ, पता चला जी वाकई घोल के पीने की कोशिश कर रही है। ठीक है, घोल के पी जाओ का मतलब ये होता है कि बहुत अच्छी तरीके से उसके हर चीज उसको समझो। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट के यानी जो वीक पॉइंट्स है ना, ये अक्सर के एतबार से वाले तो अक्सर वाले पॉइंट्स में दूसरा पॉइंट है कि मक्की आयतें और सूरतें अमूमन छोटी थी और मुख्तसर हैं, और मदनी आयात व सूर यानी सूरतें तवील और मुफस्सल यानी तफसीली है, तवील हैं और तफसीली हैं। ठीक है, जैसे कि 30वां पारा जो है वो उसके अंदर तकरीबन सारी जो है کی صورتیں زیادہ تر توحید و نشر کی منظر کشی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و تسلیم اور پچھلی امتوں کے واقعات پر مشتمل ہیں اور ان میں احکام و قوانین بیان ہوئے ہیں. اس کے برعکس حدیثوں میں خاندان اور تمدن قوانین جہاد و قتال کے احکام اور تو ابتدا میں اصول و قوانین کا ایمانیات کے اوپر محنت ہو رہی تھی, جڑیں مضبوط کرنے کے اوپر محنت ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, اب جو جڑیں مضبوط ہو گئی نا, اب اور عمارت میں پھر تفصیلات ہوتی ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے, تو 13 سال مکی زندگی کے جو انتہائی مشکل دور بھی تھا, لیکن اس مشکل دور کے اندر یہ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, تو احکامات جو ہیں وہ بعد میں آئے ہیں, اگرچہ کہ اس میں بھی احکامات جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے. بالکل ایسا نہیں تھا کہ بالکل ہی فارغ اور کچھ بھی جو ہے وہ کنڈیشنز کچھ بھی نہیں ہے اور رولز کچھ بھی نہیں ہے, بالکل ہی جو ہے وہ انرولی قسم کا, بس ایمان ہی ایمان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, ایسا نہیں تھا. لیکن تفصیلی احکامات جو ہیں وہ مدینہ طیبہ کے اندر ہی آئے. جب ایک دفعہ جڑ بن جاتی ہے نا, اب یہ نہیں ہے کہ مدینہ طیبہ میں اب جو ہے وہ ایمان کی محنت ختم ہو گئی اور اب جو ہے نا وہ جو ایمان بن چکا تو اب جو ہے وہ جتنے نئے لوگ آ رہے ہیں وہ اسی ایمان کے اوپر بیٹھ کے کھا رہے ہیں, ایسا نہیں تھا. جو بندہ دین کے اندر آتا ہے اس کا پہلے ایمان بنتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کے اعمال بنتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ ایک اجتماعی شکل کی بات ہو رہی ہے, ایک جو ہے نا وہ قومی ترتیب کی بات ہو رہی ہے کہ اوور آل ایک قوم کے جو ہے نا وہ کانسیپٹس بنتے ہیں اور ان کے عقائد بنتے ہیں, ان کی کنوکشنز بنتی ہیں, اور پھر اس قوم کی جو ہے نا وہ باقی تفصیل جو ہے وہ اس کے اوپر ایکشنز کی فارم میں اسٹیبلش ہوتی ہے. تو یہ جو ڈسکشن ہے یہ قومی اور اجتماعی کانٹیکس کے اندر یہ بات ہو رہی ہے, ورنہ ایوری انڈیویجول, ہر انسان, چاہے وہ پہلی صدی ہجری میں مسلمان ہو یا ہجرت سے پہلے مسلمان ہو یا وہ 21ویں صدی کے اندر آ کر کے مسلمان ہو, اس کا بھی یہی معاملہ ہے کہ پہلے ایمان بنتا ہے اور پھر اعمال جو ہے نا وہ بعد میں بنتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب ایمان بنے گا تب میں نمازیں پڑھوں گا, اس سے پہلے میں نماز ہی نہیں پڑھوں گا. نہیں, نمازیں پڑھنا وہ پہلے سے شروع کر دیتا ہے, نماز اس کے اوپر فوراً سے فرض ہو جاتی ہے, لیکن نماز کی کیفیات اور نماز کی جو ہے وہ فوائد اس کو ایمان بننے کے ساتھ ساتھ حاصل ہوتے ہیں, اسے پہلے حاصل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, چوتھا پوائنٹ کہ مکی صورتوں میں زیادہ تر مقابلہ بت پرستوں سے ہے اور مدنی صورتوں میں اہل کتاب اور منافقین سے ہے. ٹھیک ہے, اینڈ وین دا تھنگز گو دے آلسو گو ان دس آرڈر, فرسٹ اعمال اینڈ دین ایمان, از دس کریکٹ؟ ہاں, اس کو آپ کی بچوں کی کلاس کے اندر کمپیوٹر سائنس کے کانسیپٹ سے سمجھایا تھا نا کہ ڈیٹا اسٹرکچرس کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ. ٹھیک ہے, جو چیز آخر میں آتی ہے نا وہ سب سے پہلے جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو آرڈر جو ہے وہ جانے کا یہی ہوتا ہے. تو ظاہر ہے اعمال بعد میں آتے ہیں, ایمان پہلے آتا ہے, تو اس کے جانے کا آرڈر یہ ہوتا ہے کہ اعمال پہلے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد پھر ایمان بھی چلا جاتا ہے. اور اس کو جو ہے وہ ہمارے مشائخ اس والے دائروں سے بھی سمجھاتے ہیں, دائروں سے بھی سمجھاتے ہیں نا کہ ایمان جو ہے بالکل سینٹر میں ہے, اس کے گرد فرائض کا دائرہ ہے, اس کے گرد جو ہے واجبات کا دائرہ ہے, اس کے گرد جو ہے وہ سنن کا دائرہ ہے, اس کے گرد جو ہے وہ اخلاق کا دائرہ ہے. تو سب سے پہلے اخلاق جاتے ہیں, آداب جاتے ہیں, پھر اس کے بعد سنتیں جاتی ہیں, پھر اس کے بعد فرائض جاتے ہیں, پھر آخر میں جو ہے وہ ایمان رہ جاتا ہے اور پھر وہ بھی چلا جاتا ہے اگر حفاظت نہ کی جائے یا توبہ نہ کی جائے. توبہ سے کیا ہوتا ہے, ریورس شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, بیک ٹریکنگ شروع ہو جاتی ہے, ریورس پروسیس شروع ہو جاتا ہے, اور اگر توبہ نہ کی جائے تو پھر شیطان بڑھتا رہتا ہے, بڑھتا رہتا ہے, بڑھتا رہتا ہے, حتیٰ کہ بالکل سینٹر میں آ کر کے ایمان کو بھی ختم کر دیتا ہے. فینسز کا کانسیپٹ, جی, یعنی وہ مسلمان ہو جاتے ہیں, مومن نہیں ہوتے. بھائی یہ تو پھر وہ بہت لمبی ڈسکشن تھی نا, وہ ہو چکی ہے پہلے کہ نہیں, مسلمان بھی ہو جاتے ہیں, مومن بھی ہو جاتے ہیں, دونوں ایک ساتھ ہو جاتے ہیں, لیکن کامل مومن نہیں. ٹھیک ہے, مسلمان ہو جاتے ہیں, کامل مومن نہیں ہوتے. کامل مومن ہونے کے لیے وقت لگتا ہے. اسلام کا محل, اور کیا لکھا آپ نے, کہ اسلام کا محل جسم اور اعضا پر ہے جبکہ ایمان کا محل قلب میں ہے. हाँ महल ठीक है, वो तो कह सकते हैं महल बाहर है इसका, इसकी जैसे पीछे भी बात हो चुकी है तफसीर की क्लासेस के अंदर कि ऐसा हरगिज नहीं होता कि इस्लाम तो है ईमान नहीं है, या ईमान तो है और इस्लाम नहीं है, ये कोई स्टेट नहीं होती, ऐसी कोई स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, अच्छा पांचवा पॉइंट के मक्की सूरतों का असलूब बयान ज्यादा पुरशुकोह है, यानी बड़ा हिला देने वाला ना, बड़ा जो है वो जैसे कल्ला का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, यानी डांट डपट, और बड़ा जो है वो ऐसा किस्म का। इसमें इस्तेआरात व तशबीहात और तमसीलें ज्यादा हैं और जखीरा अल्फाज बहुत वसीय है। इसके बरखिलाफ मदनी सूरतों का अंदाज निस्बतन सादा है। ठीक है, यानी बहुत मुश्किल आप जो है वो उनकी जो है वो सरफी तहकीक पढ़ें, और उनकी जो है ना वो मक्की सूरतों के जो है वो क्या कहते हैं सीगे निकालें। ठीक है, तो मुश्किल है वो अल्फाज। ठीक है, और नए नए अल्फाज बहुत ज्यादा, यानी जबकि मदनी सूरतों के अंदर रिपीटेटिव, ठीक है, तो जो अल्फाज हैं तो वो बहुत ज्यादा रिपीट भी हो रहे हैं, और आपको एक दफा जब एक लफ्ज आपने समझ लिया तो फिर वो लफ्ज इतनी दफा कुरान मजीद में आएगा कि आपके लिए जो है वो आसानी हो जाएगी, भाई आपने एक दफा सीख लिया। मक्की सूरतों के अंदर यानी एजाज कुरान को इस्टेब्लिश किया जा रहा था उन मक्का मुकरमा के मुशरिकीन और काफिरीन के सामने, जो कि अरबी जुबान के अंदर पूरे अरब में सबसे आगे बढ़कर, सबसे आगे बढ़कर। ठीक है, तो इनको जो यानी क्या जा रहा था, इनको काउंटर किया जा रहा था, तो इनके इन्हीं के पिच के ऊपर खेला जा रहा था। क्रिकेट विकेट वाले बात अच्छी तरह समझते हैं ना कि दुश्मन को उसके पिच पे शिकस्त देना। ठीक है ना, जिससे कि वो ज्यादा मारूफ है, वो जुबानदानी के माहिर थे, तो उनको जुबानदानी के जरिए से अल्लाह ताला ने हराया था, उनको आजिज किया था, इसी को एजाज कुरान कहते हैं। मक्का मदीना मुनव्वरा के अंदर ऐसा मामला नहीं था। ठीक है, वो भी अदबी दान थे, वो भी शेर व शायरी वगैरह क्या करते थे, लेकिन उस लेवल के नहीं थे जिस लेवल के मक्का मुकरमा वाले। मक्की और मदनी सूरतों के अंदाज व असलूब में ये फर्क दरअसल हालात, माहौल और मुखातबों के, यानी जिनको मुखातब किया जा रहा था उनके इख्तिलाफ की वजह से पैदा हुआ है। मक्की जिंदगी में मुसलमानों का वास्ता चूंकि ज्यादातर अरब के बुत परस्तों से था और कोई इस्लामी रियासत वजूद में नहीं आई थी, इसलिए इस दौर में ज्यादा जोर अकायद की दुरुस्ती, अखलाक की इस्लाह, बुत परस्तों की मुदल्लल तरदीद यानी दलील के साथ तरदीद करना, और कुरान करीम की शान एजाज के इजहार पर दिया गया। ठीक है, अब ये बातें जो है ना वो हम हाईलाइट कर लें यहां पर। अकायद, ठीक है, अखलाक, ठीक है, यानी अखलाक से मुराद जो है वो सिर्फ नाइस हाउ आर यू डूइंग एंड नाइस टू बी विद यू एंड ये वाले नहीं, बल्कि अखलाक का जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ना इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो इसका मतलब होता है रूहानी बीमारियां। ठीक है, रूहानी बीमारियां, गुस्सा, शहवत और तकब्बुर, और इनका इनका इलाज, इनकी इनका रद्द करना, इनको काटना, इनको तोड़ना। ठीक है, तकब्बुर को तोड़ना कल्ला के जरिए से, डांटना, डांट पड़ती है ना तो फिर जो है ना वो तकब्बुर टूटता है इंसान का। ठीक है, गुस्सा जो है ना वो उसकी इसलाह होती है। क्या अभी तुम क्या अपने क्या समझते हो अपने आप को जो गुस्सा करते फिर तो दूसरों के सामने? ठीक है, तो अखलाक की इसलाह से यहाँ पर ये मुराद है। ठीक है, वरना सूरह हुजरात के अंदर जिन अखलाक की बात हो रही है ना, वो सूरह हुजरात तो बहुत बाद में जाकर के मदीना तैयबा के अंदर नाजिल हुई है। ठीक है, वो मुआशरती अखलाक और आपस में जो है ना वो एक दूसरे के साथ यानी कैसे रहना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे जो है वो किसी का इंतजार करना चाहिए, किसी कैसे जो है वो उससे मुखातिब होना चाहिए। ठीक है, ये मैनरिज्म जिनको कहते हैं अंग्रेजी में, इनको मैनरिज्म कहते हैं। ये मैनरिज्म जो है ना ये मुआशरती तौर तरीके होते हैं, और ये भी बहुत अहम चीज है, ये भी बहुत जो है वो इंसान की निखार के लिए बहुत अहम है। लेकिन मक्का मुकरमा वाली जिंदगी के अंदर ये मैनरिज्म्स की खाली बात नहीं हुई, वहां पर बिल्कुल जो अंदर के मोहलक मोहलिक रूहानी अमराज होते हैं उनकी इसलाह की बात हो रही है। ठीक है, तो अकायद के साथ साथ मोहलिक रूहानी बीमारियों की इसलाह। ठीक है, हाईलाइट कर लें इस वाली बात को, क्यों ये अभी करते हैं इसके ऊपर। बुत परस्तों की मुदल्लल तरदीद, ठीक है, यानी जो जो शिर्क और बुत परस्ती, ठीक है ना, अब ये बुत परस्ती जो है वो पत्थर के बुत हों के लकड़ी के बुत हों के तखयल के बुत हों, ठीक है, जिस किस्म के भी बुत हों, आज अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक लकड़ी और पत्थर के बुत जो है वो हमारे यहाँ दोबारा शुरू नहीं हुए, लेकिन तखयल के बुत जो है वो बहुत बड़े हैं। ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ये वेस्टर्न मेथड ऑफ एजुकेशन, ये वेस्टर्न डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, ये क्या है? ये सारे के सारे तखयलात के बुत हैं, ये बुत कदाए तसव्वुरात है, ये पूरा का पूरा। अल्लामा इकबाल को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए हैं, इश्क इश्क न हो तो शरा और दीन, यानी शरीयत भी और दीन भी क्या है? बुत कदाए तसव्वुरात, बुत कदा यानी इसके अंदर बुत रखे हुए हैं, ठीक है? तो बुत परस्तों की कैसे क्या तरदीद? मुदल्लल तरदीद, यानी दलील के साथ तरदीद। और दलील क्या चीज होती है? दो तरह की दलीलें होती हैं, एक होती है अकली दलील, एक होती है नकली दलील, ठीक है? नकली दलील उसको कहते हैं कि जिस टेक्स्ट के ऊपर, जिस जो आपके पास इल्म पीछे से आ रहा है, बड़ों से आपके पास जो इल्म आ रहा है, जिस पर आप भी और आपका मुखालिफ भी दोनों मुत्तफिक हों जिस बात के ऊपर, उसको दलील के तौर पे इस्तेमाल करके मुखालिफ की गलत नजरिए या गलत अमल को रद्द करना, ठीक है ना? जो मुत्तफिकुन अलैह बात है, दोनों के दरमियान, मेरे और मेरे मुखालिफ दोनों के दरमियान जिस बात जिसमें हम कॉमन इत्तेफाक करते हैं, उसको इस्तेमाल करके उसकी किसी गलत बात का रद्द करना, इसको कहते हैं नकली दलील इस्तेमाल करना। नकली दलील इस्तेमाल करना, आप नकली दलील ये नहीं इस्तेमाल कर सके, आप हिंदू से जाके बात कर रहे हैं और पुरानी दलील इस्तेमाल कर रहे हैं, भाई मैं तो नकली दलील इस्तेमाल कर रहा हूँ, है ना? ये नकल होकर मेरे पास पहुंची है कुरान मजीद, ठीक है ना? तो अब मैं हिंदू से कुरान मजीद के जरिए से बात करूंगा, देखो कुरान तो ये कहता है ना? क्या तुम इस बात को नहीं मानते? कुरान तो ये कहता है, भाई वो तो कहता है, मैं तो कुरान को मानता ही नहीं हूँ, मैं तो कुरान को मानते ही नहीं हूँ कि ये अल्लाह की किताब है, मैं तो कुरान को, मैं तो रसूल को मानते ही नहीं हूँ कि अल्लाह के रसूल है, तुम मुझे किस बात की दलील दे रहे हो भाई? तो हिंदू से बात करेंगे तो वो बात करेंगे ना जिसपे हम हिंदू और आप दोनों के दोनों मुत्तफिक हों, वो तलाश करें उस वाली बात को जिसपे आप दोनों मुत्तफिक हों, तब उससे उसकी काउंटर करेंगे, देखो तुम भी तो इस बात को मानते हो ना, तो फिर जो है तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो? इसको नकली दलील से रद्द करना कहते हैं। और अकली दलील भी, अकली दलील ये होती है कि आपके पास कोई पीछे से आया हुआ कोई 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 टेक्स्ट नहीं है, कोई आपके पास ट्रेडिशनल जो है वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस, जिसको के जो कहते हैं ना कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन, सपोज टू बी वेरी कॉमन लेकिन इज नॉट वेरी कॉमन, लेकिन होना तो चाहिए ना सबके पास कॉमन सेंस, ठीक है? तो जिसको के आम मुआशरे में जो है वो बात को ठीक समझा जाता है, लॉजिकल आर्ग्यूमेंटेशन जिसको कहते हैं, जजाकल्ला, ठीक है ना? तो इस दौर के अंदर जब दीन इस्लाम लौट करके वहीं पे पहुंच गया है जहां से ये शुरू हुआ था, हम वहीं पे आकर के वापस खड़े हो गए हैं, तो अब हमें भी यही काम करने हैं जो मक्की जिंदगी के अंदर जिस तरीके से जो है वो दीन की हिफाजत हुई थी, जिस तरीके से जो है वो दीन की तबलीग हुई थी, इस वक्त हम भी उसी पोजिशन में आके खड़े हुए हैं। तो हमें भी अकायद के ऊपर, अकायद की दुरुस्तगी, अखलाक की यानी जो रूहानी अमराज होते हैं उनकी इस्लाह, और जो मुखालिफ हैं उनकी मुदल्लल तरदीद, मुदल्लल दलील के साथ जो है वो उनकी तरदीद करना, ठीक है? और कुरान करीम की शान एजाज के इजहार पर दिया गया। तो भाई उस वक्त की शान एजाज, उस वक्त जो है वो लैंग्वेज वॉज यानी मोस्ट डोमिनेंट थिंग, है ना? जो सबसे जिसको शान, जिस चीज को समझा जाता था तो वो लैंग्वेज थी। आज के दौर के अंदर आज के दौर के अंदर साइंस को, ठीक है, साइंस को जो है वो सबसे ज्यादा अफजल चीज समझा जाता है, या खाली साइंस भी नहीं, और भी चीजें हैं अगर हम थोड़ा सा और जरा गौर करें तो, ये प्योर सिंपल साइंस ही खाली आज के दौर की जो है ना वो खुदा नहीं है, ठीक है? कुछ अरसा पहले तक थी, कुछ अरसे पहले तक थी, इस वक्त जो है ना क्या है? इस वक्त क्या है? जरा अब बात निकल ही आई है तो फिर अब थोड़ा सा वी शुड पुट आर हेड्स टुगेदर, राइट? अकल, राइट? अकल, ठीक है ना? ये टेक्नोलॉजी जो है ना, ये तो आज वो किसी साहब ने जो है वो लिखते रहते हैं शायद, इसको उनसे कोई खास ज्यादा इत्तेफाक नहीं होता, लेकिन लोग बड़ा उसको पसंद करते हैं, पता नहीं क्यों पसंद करते हैं। खैर, तो साहब ने लिख दिया जी कि वो जो है ना वो वॉरफेयर 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 वाले बातें कर रहे थे। तो वो फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर, फिर सेकंड जनरेशन वॉरफेयर का जमाना खत्म हो गया, फिर थर्ड जनरेशन वॉरफेयर का जमाना खत्म हो गया, फिर फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर का जमाना खत्म हो गया, फिर फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का जमाना आ गया। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर आपको पता है ना, बहुत ज्यादा पिछले चंद सालों में तो ये बातें हम हमारे दरमियान भी मशहूर हो गई हैं। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर यानी जहन को हरा, अवामुन नास के जहन को जो है वो डायरेक्ट अप्रोच करना और जो है वो जहनी तब्दीली। तो भाई साहब कहते हैं कि जी फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का भी जमाना गुजर गया है, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का भी जमाना गुजर गया है, और अब जो है ना वो सिक्स जनरेशन उनके हिसाब से क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठीक है ना, मस्नूई क्या कहते हैं उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया था उन्होंने ठीक है। तो भाई पहली बात तो यह है कि जमाना गुजर कोई नहीं गया है, राइट। ये जो वॉरफेयर होती है ना, ये इनके जमाने गुजर नहीं जाते हैं, बल्कि क्या होता है, पहली जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन वॉरफेयर, जो भी इन्होंने जो भी इनकी तरतीब रखी हुई है उन्होंने, मुझे नहीं पता इन्होंने क्या एग्जैक्टली तरतीब रखी हुई है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर के बाद सेकेंड जनरेशन वॉरफेयर की का जो जमाना आया ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर की जरूरत बाकी नहीं रही, नहीं, बल्कि दुश्मन जो है वो फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर के अंदर कामयाबी हासिल कर चुका है, वो कामयाबी हासिल कर चुका है, अब उसकी बुनियाद पर वो सेकेंड जनरेशन वॉरफेयर टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, अब उसकी बुनियाद पर वो अब थर्ड जनरेशन वॉरफेयर की टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं। दे आर बिल्डिंग अपॉन इट, दे आर बिल्डिंग अपॉन इट ठीक है। तो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का जमाना वैसे तो अभी कोई खत्म नहीं हुआ, मुस्तकिल चला ही चला जा रहा है ठीक है ना। और वो जो है ठीक है भाई, आपको लग रहा है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना वो बस सब कुछ है ना, यानी बात वहीं पे घूम फिर करके आती है कि हाँ, कंबाइंड इफेक्ट भी आप कह सकते हैं कि भाई ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया जा रहा है आपके फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के अंदर ठीक है, लेकिन घूम फिर के बात वही आती है कि जो है ना वो जो हमें हमारे करने का काम था ना वो हमने नहीं करना ठीक है, और वो सारे काम करने हैं जो कि हमारे करने के थे नहीं और जो कि हम कर सकते नहीं है, वो हमने सारे काम करने हैं ठीक है। तो भाई अल्लाह ताला ने एक काम लगाया था, मैं मुसलमान मुसलमान भाई भाई है, काम लगाया था कि भाई मैंने तुम्हें इस दुनिया के अंदर ना वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून ठीक है ना, और क्या फरमाया था कि अल्लाहु अलमु बेअदाएकुम, अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों से ज्यादा वाकिफ है ठीक है ना, और अल्लाह ही ने तुम्हारी हिफाजत करनी है, तुम बंदगी तो करो ना पहले, हमने बंदगी करनी छोड़ दी और जो है ना वो पहले फिफ्थ जनरेशन करेंगे तो कुछ फोर्थ जनरेशन करेंगे, तो अब जो है वो सिक्स जनरेशन शुरू हो गई है, इसी में मरते रहेंगे, इसी में फंसे रहेंगे सारे के सारे ठीक है ना। भाई बंदगी करो, फिर उसके ऊपर इसको बिल्ड करो, इसके ऊपर जो है वो फिर असबाब इख्तियार करो, उसके ऊपर जो है वो घोड़े पालो या जो बम बनाओ या जो करो, भाई बंदगी की बेस होगी तो उसके ऊपर तुम फिर बाकी काम करो ना, लेकिन बंदगी नहीं करनी भाई, गंदगी करनी है, लिद करनी है, उसको कहते हैं ना लिद करनी, और उसके ऊपर जो है ना फिर वो जनरेशन जनरेशन की वॉरफेयर के जो है वो लिखे चले आ रहे हैं मौजूदात उसके ऊपर ठीक है। ये अच्छा शैतान भी मिल गया है मसरूफ रखने का बहाना। बहरहाल तो उस दौर में ज्यादा जोर अकायद के ऊपर, अखलाक की दुरुस्तगी दुरुस्ती, असलाह बुतपरस्तों की मुदल तब्दील और कुरान करीम की शान एजाज के इजहार पर दिया गया। इसके बरखिलाफ मदीना तैयबा में एक इस्लामी रियासत वजूद में आ चुकी थी, लोग जौक दर जौक इस्लाम के साए तले आ रहे थे, इल्मी सतह पर बुत परस्ती का इब्ताल हो चुका था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बच्चे सुन रहे हैं ना ठीक है ना, या ये आजिज ने जो है ना वो उस वक्त नहीं पढ़ी थी जब आप लोगों को सीरत क्लास पढ़ा रहे थे ना, जब हमने आपको क्या बताया था कि नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जब ये आयत नाजिल हुई है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नियमती व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना और इजा जाअ नसरुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा, तो कौन सी वाली फतह आई थी, कौन सी वाली फतह आई थी, क्या झंडे गड़ गए थे हर जगह राइट, क्या जो है वो एशिया फतह हो गया था, क्या यूरोप फतह हो गया था, क्या अफ्रीका फतह हो गया था, नहीं, अरेबियन पेनिनसुला भी पूरा का पूरा फतह नहीं हुआ था, और जो फतह हुआ था वो भी जो है अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह के अंदर रिवोल्ट कर गया था,
कितना ज्यादा बड़ा एरिया जो है वो रिवोल्ट कर गया था, मुर्तदीन हो गए थे उसके अंदर, राइट? तो कौन सी वाली फतह आई थी? यही वाली फतह आई थी, इंटेलेक्चुअल फतह आई थी। क्या लगते हैं हजरत? इल्मी सतह पर बुत परस्ती का इब्तार हो गया, इल्मी सतह पर, इल्मी सतह पर। हम समझते हैं इल्म जो है ना, ये मालूमात का नाम है, हमने इधर किताब पढ़ ली, उधर किताब पढ़ ली, इधर से नंबर ले आए, उधर से तमगा मिल गया, उधर से जो है वो ग्रेड्स मिल गए, ठीक है ना, बस ये इल्म हो गया हमारा। नहीं, असल चीज ही इल्म है, लेकिन वो इल्म नहीं जो कि हम ग्रेड्स के चक्कर में जो है जिसके पीछे भागते दौड़ते फिरते हैं, लेकिन जो असल इल्म है जिसको नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल इल्म नूरुन, अल इल्म नूरुन, ठीक है, कि इल्म तो नूर है, जिस नूर के अंदर फिर इंसान को बात समझ में आती है और फिर वो उसके ऊपर जो है ना वो मोहब्बत से अमल करता है, फिर उसके बाद मोहब्बत की बारी आती है, अमल के लिए मोहब्बत की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आज सुबह को कुदरतन खवातीन के अंदर भी बहुत ज्यादा इसके ऊपर बात हुई है। तो इल्मी सतह पर बुत परस्ती का इब्ताल हो चुका था मदीना तैयबा की जिंदगी में, और तमाम तर नजरियाती मुकाबला अहले किताब से था, इसलिए अहकाम व कवानीन और हदूद व फराइज की तालीम और अहले किताब की तरदीद पर ज्यादा तवज्जो दी गई, और उसी के मुनासिब असलूब बयान इख्तियार किया गया। कैन वी से इट पोलिटिकल फतह? कैन वी से वॉट पोलिटिकल फतह? हम तो ये आपको ये समझा रहे हैं कि कोई पोलिटिकल फतह बहुत थोड़ी सी हुई थी, इंटेलेक्चुअल फतह हुई थी। पॉलिटिकल फतह तो उमर फारूक रहता है कि जमाने में ज्यादा जा करके हुई, और उस्मान गनी रहता है कि जमाने में ज्यादा जा करके हुई। पॉलिटिकल फतह झंडे गाड़ने को कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद कुरान मजीद का, कुरान करीम का तदरीजी नुजूल, तो पीछे आ चुका है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम दफातन और यकबारगी नाजिल नहीं हुआ, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके तकरीबन 23 साल में उतारा गया है। बाज औकात जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक छोटी सी आयत, बल्कि आयत का कोई एक जुज लेकर के भी तशरीफ लाते थे, ठीक है, और बास मतलब कई कई आयतें बयक वक्त नाजिल हो जाती थी। कुरान करीम का सबसे छोटा हिस्सा जो मुस्तकिलन नाजिल हुआ, यानी एक साथ नाजिल हुआ, वह गैर उल गरर, ठीक है, सूरह निसा की 95th आयत जो है वो जानवे, जो एक तवील आयत का टुकड़ा है खाली, यानी जिब्राइल सोचें जरा, अर्श से लेकर के जो है वो फर्श पे नबी अलैहिस्सलाम के पास आ रहे हैं 3 अल्फाज लेकर, ठीक है, और दूसरी तरफ पूरी सूरह इनआम एक ही मरतबा में नाजिल हो गई, ठीक है। इमाम शाफी के उस्ताद का, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट मैसेज में लिखा है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद का शेर है, अल इल्म नूरुन, नहीं, इलम बि अन्न अल इल्म नूरुन व नूरुल्लाह ला युती लि आसी, कि जान लो कि इल्म तो नूर है और अल्लाह का नूर ये अल्लाह ताला गुनाहगार को नहीं देता, ठीक है ना। ये नूर वाला इल्म जो है ना, नूर प्रोग्राम सऊदी अरब के अंदर नूर प्रोग्राम होता है, वो नूर प्रोग्राम जो है ना, अल्लाह ताला का नूर प्रोग्राम होता है ना, ये जो है ना वो गुनाहगार को नहीं मिलता, गुनाहगार को नहीं मिलता, ठीक है। जज़ाकअल्लाह। कुरान करीम को यकबारगी नाजिल करने की बजाय थोड़ा थोड़ा करके क्यों नाजिल किया गया, ये सवाल खुद मुशरिकीन अरब ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था। बारी तआला ने इस सवाल का जवाब खुद इन अल्फाज में दिया है, वकाल अल्लज़ीना कफरू, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वकाल अल्लज़ीना कफरू लौला नुज़िला अलैहिल कुरआनु जुमलतन वाहिदा कदालिका लिनुसब्बित बिही फुआदका वरत्तलनाहु तरतीला वला यातूनका बिमसलिन इल्ला जिनाक बिल्हक्की व अहसन तफसीरा। और काफिरों ने कहा कि आप पर कुरान एक ही दफा में क्यों नहीं नाजिल कर दिया गया, जुमला वाहिदा यानी एक ही दफा के अंदर क्यों नहीं, इस तरह हमने कुरान को तदरीजन उतारा है इसी तरह, ताकि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को मुतमईन कर दें, ठीक है ना, लिनु सब्बिता बिही फुआदक, आपके दिल को साबित बना दें। दिल क्या है? कल्ब। कल्ब क्या है? वो उलटता पुलटता रहता है, राइट, कल्ब जो है ना, युकल्लिबु कैफ यशा, इधर उलटना उधर पलटना, तो इस कल्ब को साबित बनाना है, सब्त करना, तो वही फरमाया लिनुसब्बिता बिही फुआदक, ताकि इसके जरिए से हम आपके कल्ब को साबित कदम कर दें, ठीक है। और ये जब साबित कदम होता है ना, तभी मुतमईन होता है, उलटता पुलटता लुढ़कता फुड़कता, ऐसी चीज जो है वो कभी इत्मीनान का इत्मीनान हो सकता है ऐसी चीज के अंदर? ये तो बेइत्मीनान चीज है, ये तो बेइत्मीनान चीज है जो कि इधर से उधर डोलती रहती है लोटे की तरह से, राइट। हमारे यहाँ सियासतदानों को पहले कहा जाता था लोटे, ठीक है, तो उनमें कोई इत्मीनान ही कोई नहीं होता था, ठीक है। यानी साबित कदमी के साथ इत्मीनान, यानी दोनों चीजें एक साथ लाजम मज़ूम है। और ये कैसे मिलता है? अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र से जो है ना वो दिल को इत्मीनान मिलता है, यानी अल्लाह के जिक्र ही से जो है वो दिल साबित कदम होता है। अच्छा, फिर उसके बाद फरमाया कि और हमने इसको रफ्ता रफ्ता पढ़ा है, और वो कोई बात आपके पास नहीं लाएंगे मगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हक लाएंगे और इसकी उम्दा तफसीर पेश करेंगे। यानी वो कोई भी बात आपके पास लेकर के आएंगे ना, तो हम उसके आपके पास जवाब में हक लेकर के आएंगे और बेहतरीन उसकी तफसीर पेश करेंगे, अहसन तफसीरा। तो अब ये जो कल्ब को इत्मीनान देना, अब इसकी तफसीर जो है फिर इमाम राजी रहमतुल्लाह जैसे मशाइख ने फिर बयान फरमाई, तो फरमाते हैं इमाम राजी ने इस आयत की तफसीर में कुरान करीम के तदरीजी नुजूल की जो हिकमतें बयान फरमाई हैं, यहाँ उनका खुलासा समझ लेना काफी है। वो फरमाते हैं कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, लिखते पढ़ते नहीं थे, इसलिए अगर सारा कुरान एक मरतबा नाजिल हो गया होता तो उसका याद रखना और जब्त करना दुश्वार होता। इसके बरखिलाफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लिखना पढ़ना जानते थे, इसलिए उन पर तौरात एक ही मरतबा नाजिल कर दी गई, ठीक है। तो अब ये एक एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, जो कि उलमा जो है वो फिर दूसरी मुख्तलिफ चीजों की जो है तौजीहात वजह बयान करते हैं, उसकी जो है तावील बयान करते हैं उसकी, ठीक है। तो भाई अब जाहिर है इसके ऊपर कोई किसी के दिल में बात आ सकती है कि भाई अल्लाह कुरान मजीद, तो वैसे कुरान मजीद भी अल्लाह ताला ही ने नबी अलैहिस्सलाम को याद दिलाया, तो अगर एक जुमले में नाजिल कर देते, यानी एक ही दफ़तन नाजिल कर देते, तो वो भी अल्लाह ही ने याद दिलाना था, ठीक है। तो वो बात भी ठीक है, अल्लाह तो चाहे कुछ भी होता अल्लाह ताला जो है वो याद दिला सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला दुनिया के अंदर एक आम तौर पे जो तौर तरीके बनाते हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला की सुन्नत ये है कि अल्लाह ताला फिर उमूमी तौर पर अपने बनाए हुए तौर तरीकों को तोड़ते नहीं, बल्कि उन्हीं के तहत ही पे काम करते हैं। तो अल्लाह ताला का बनाया हुआ आम तरीका क्या है कि इंसान को जो है ना वो तदरीजन चीजें याद होती हैं, मुख्तसर चीजें जो है वो आसानी से याद हो जाती हैं, बड़ी चीजें जो है वो एक्सेप्शनली याद होती हैं, लेकिन अदरवाइज जो है वो याद नहीं होती हैं, ठीक है। तो अब जो अल्लाह ताला ने तरतीब बनाई है, तो अल्लाह ताला ने उसी तरतीब के मुताबिक अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान मजीद को नाजिल किया, यानी आहिस्ता 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 करके, ठीक है। अब इसमें और भी हिकमतें होती हैं कि भाई कल को कोई ये ना कहे कि भाई वो तो एक्सेप्शन थी और हम तो जो है ना वो एक्सेप्शनल नहीं है, तो अब हम कैसे करें, हमारे लिए कैसे, ये तो हो ही नहीं सकता फिर, ठीक है ना। तो इंसानों के पास हुज्जत ना रहे खामखा की जो है ना वो बहस करने के लिए और खाम और जो है ना वो एतराज करने के लिए अल्लाह ताला हुज्जत नहीं छोड़ते, ठीक है ना। तो इस तरह से हुज्जत पूरी कर दी कि भाई मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने भी तदरीजन आहिस्ता आहिस्ता करके याद किया, तुम भी तदरीजन याद करो, तुम भी आहिस्ता आहिस्ता करके उसको समझो, पढ़ो इसको, ठीक है ना। जैसे सहाबाए कराम जो है वो दो दो साल जो है वो एक सूरत को समझने के ऊपर लगा देते थे, है ना। बल्कि शायद उमर रज़ी का है ना कि 8 साल में जो है वो सूरह बकरा खत्म करी, क्या मतलब पढ़ना नहीं आता था उनको, नहीं, सूरह बकरा के मारिफ समझने में उन्होंने 8 साल लगाए, ठीक है। तो तदरीजन सहाबा ने भी समझा, तदरीजन हम भी जो है वो समझ सकते हैं। अच्छा, दूसरा कि अगर पूरा कुरान एक दफा नाजिल हो जाता तो तमाम अहकाम की पाबंदी फौरन लाजिम हो जाती, और ये उस हकीमाना तदरीज के खिलाफ होता जो शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मलहूज रही है, ठीक है। यानी सिर्फ इल्मी तौर पे तदरीजन नहीं, बल्कि अमली तौर पे तदरीजन, ये तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता। अगर एक साथ जो है वो सारे अहकाम नाजिल हो जाते तो फिर वो तो यानी अमल करना तो फिर और भी ज्यादा मुश्किल काम है, ठीक है। इल्म तो फिर एक थ्योरेटिकल चीज होती है ना, अमल तो प्रैक्टिकल चीज होती है, और मुश्किल हो जाती, उम्मतियों के लिए मुश्किल हो जाती खसूसन। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कौम, अच्छा सॉरी, क्या लिखा है आपने, मौके की मुनासिबत से अहकामात नाजिल हुए, हाँ ये अगला टॉपिक आ रहा है, शान नुज़ूल वाला टॉपिक। तीसरा पॉइंट कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कौम की तरफ से हर रोज नई अजियतें बर्दाश्त करनी पड़ती थी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम का बार बार कुरान लेकर आना इन अजियतों के मुकाबले को आसान बना देता था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़वियत क़ल्ब का सबब बनता था, ठीक है। जिब्राइल السلام کا آنا تقویت قلب کا، ویسے بھی فرشتے کا آنا رحمت کا نزول، رحمت کے یعنی جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس تو رحمت ہی بن کر کے آتے تھے نا، وہ تو قوم لوط کے اوپر زحمت بن کر کے آئے، ان کو عذاب دینا تھا تو جبرائیل علیہ السلام عذاب دینے کے لیے، لیکن نبی علیہ السلام کے اوپر تو رحمت بن کر کے آتے تھے، تو فرشتے کا نزول یہ رحمت کا سبب ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد جیسے کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ نبی علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ نسبت اتحادی نصیب ہو گئی تھی، تو جس کے ساتھ نسبت اتحادی ہو اس کو دیکھ کر کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے، گارڈن گارڈن ہو جاتا ہے انسان کا دل، خوش خوش ہو جاتا ہے جس کے ساتھ آپ کو محبت ہو، شدید محبت ہو. ٹھیک ہے، تو جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر کے نبی علیہ السلام کے غم دور ہو جاتے تھے، مشکلات جو ہیں وہ آسان ہو جاتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے بہانہ بنایا اس طریقے سے، بار بار بھیجتے تھے، بار بار بھیجتے تھے. اچھا، چوتھا پوائنٹ، اس پہ آج کی کلاس ہم ختم کر دیں گے انشاءاللہ. قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ لوگوں کے سوالات کے جواب اور مختلف واقعات سے متعلق ہے، بڑا حصہ، پورا کا پورا نہیں، بڑا حصہ. اسی لیے ان آیتوں کا نزول اسی وقت مناسب تھا جس وقت وہ سوالات کیے گئے یا وہ واقعات پیش آئے، اس سے مسلمانوں کی بصیرت بھی بڑھتی تھی، یعنی تدریجن بڑھتی تھی نا، یہ پورا کا پورا ایک ایجوکیشن پروسیس تھا. ٹھیک ہے، قرآن کریم کی غیبی خبریں بیان کرنے سے اس کی حقانیت اور زیادہ آشکار ہو جایا کرتی تھی. ٹھیک ہے، تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کبیر میں سے یہ پوائنٹس یہاں پہ نقل فرمائے. ٹھیک ہے، کیا لکھا انہوں نے کہ سو وائی ڈڈ دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم فیلٹ ہارڈ ڈیورنگ وحی، فیلٹ ہارڈ ڈیورنگ وحی اس لیے کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا وہ اپنی اصل شکل میں آتے تھے. ٹھیک ہے، جس وقت جس والی وحی کے اندر جو ہے وہ فیلٹ ہارڈ، لیکن جس وقت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے تو اس وقت جو ہے نا پھر وہ بالکل بھی مشکل نہیں ہوتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ہارڈ والا معاملہ ہے نا، اشد علیہ والا، تو اس میں ایک احتمال ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے ہوئے ہوتے تھے اپنی اصل شکل کے اندر یا فرشتے کی فارم میں، جو کہ نبی علیہ السلام میں نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی تھی. لیکن دوسرا احتمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست جو ہے وہ نبی علیہ السلام تک جو ہے وہ پہنچا رہے ہوتے. تو یہ نسبت اتحادی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تھی نا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ تو بالکل ہی ایک مختلف ہستی ہیں، خالق ہیں، اور نبی علیہ السلام مخلوق ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ تو بالکل بھی جو ہے وہ راسوت والا معاملہ نہیں ہے نا اس کے اندر. بہرحال، تو ساری باتیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، کوئی اور اگر سوال ہو یا پوائنٹ ہو آپ کے ذہن میں؟ لاسٹ ٹائم جو ہے ٹھیک ہے ختم ہو چکا ہے. چلیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ اس علمی کلاس کو بھی جس میں ہم واقعی یہ یعنی فیکٹس اینڈ فگرز وغیرہ پڑھ رہے ہیں، معلومات میں جو ہے ہمارا اضافہ ہو رہا ہے، اس کو بھی جو ہے نا ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب بنا دے. واہ، الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.